SBS हिंदी सेवा के लिए नई दिल्ली से आप सबको मनन कुमार का नमस्कार। आइए सुनते हैं भारत के कुछ खास समाचार। लगभग 10 महीनों पहले 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक करने की मांग को लेकर शुरू हुए किसान आंदोलन ने 5 सितंबर के दिन मुजफ्फरनगर में एक महापंचायत की, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के तहत लाखों किसानों के अलावा बड़ी संख्या में श्रमिक, शिक्षक और विद्यार्थी संगठनों ने भी भाग लिया। किसान इसे आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन बता रहे हैं। देश भर के राज्यों, यहाँ तक कि तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी बंगाल के किसानों और श्रमिक यूनियन ने भी इस महापंचायत में भाग लिया। कर्नाटक से आई किसान नेता श्रीमती अनुसुईया बेन ने अपना समर्थन कुछ इस तरह जताया।
9 महीने से इतने सारे किसान दिल्ली के आसपास मोर्चे में बैठे हुए हैं। ये काले कानून किसानों को नहीं चाहिए। 9 महीने से हम देश भर ये कहते आ रहे हैं, जो किसानों को नहीं चाहिए मोदी जी को क्यों चाहिए कानून।
किसान नेता श्री योगेंद्र यादव ने किसानों को आगे की लड़ाई के लिए आह्वान देते हुए कहा, केंद्र सरकार किसानों से बिल के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए तो तैयार है, लेकिन वापस लेने को नहीं। न ही वह न्यूनतम समर्थन मूल्य को वैधानिक करार देने को तैयार है। किसान नेताओं ने इस महापंचायत में साफ कर दिया है कि वो आने वाले समय में न केवल उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रचार करेंगे, बल्कि अन्य राज्यों में भी करेंगे। किसानों के आंदोलन की मजबूती को देखते हुए बीजेपी के कई नेताओं ने मोदी सरकार को इसके बारे में आगाह करने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से सांसद श्री वरुण गांधी ने महापंचायत में आए लोगों की भीड़ का वीडियो ट्विटर पर जारी करते हुए लिखा, आज मुजफ्फरनगर में आंदोलन के लिए लाखों किसान जमा हुए, वे हमारा ही खून हैं, हमें उनके साथ आदरपूर्वक दोबारा बातचीत शुरू करनी चाहिए, हमें उनका दर्द, उनका दृष्टिकोण समझते हुए उनके साथ काम करते हुए एक आम सहमति बनानी चाहिए। उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले को सुन रही एक विशेष अदालत ने दंगों के जांच में दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से असफल करार दिया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश श्री विनोद यादव ने सबूतों के अभाव में अभियोगियों शाह आलम, राशिद सैफी और शादाब को रिहा करते हुए दिल्ली पुलिस को सख्त लताड़ लगाई। उन्होंने कहा, जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद के सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों फिरोजाबाद, मथुरा और आगरा में फैले बुखार को केंद्रीय सरकार की एक स्वास्थ्य टीम ने डेंगू होने की पुष्टि कर दी है। इस बुखार की वजह से पिछले कुछ दिनों में दर्जनों बच्चों समेत लगभग 100 लोगों की मौत हो गई है। मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद के जिला अस्पताल का दौरा कर जानकारी ली।
18 तारीख को पहला मामला देखने को आया था और तेजी के साथ यहाँ के लगभग 8-9 मोहल्लों में संदिग्ध डेंगू से संबंधित मामले देखने को मिले। मेडिकल कॉलेज में 3 मौतें हुई, जिसमें से 2 पहले से ब्रॉड डेड थी और एक की दुखद मौत वहाँ पर हुई बच्चे की। शेष प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आगरा में भी कुल मिलाकर के जो घर में या अन्य क्षेत्रों में मौतें हुई हैं वो लगभग 32 बच्चों की और 7 एडल्ट की मौत होने का पूरा वो है।
इस घटना को लेकर कांग्रेस की नेता श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार की कड़ी आलोचना की है और राज्य के बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का जिम्मेदार भी ठहराया है। उत्तर पूर्व भारत के प्रमुख राज्य असम में शांति बहाल करने के प्रयास में कदम बढ़ाते हुए भारत सरकार, राज्य सरकार और कार्बी एंगलोंग के 5 गुटों के बीच त्रिपक्षीय शांति समझौते को अंजाम दिया गया है। समझौते के तहत कार्बी एंगलोंग और उत्तरी कछार पहाड़ी क्षेत्र के गुटों को, जो काफी समय से पृथक राज्य की मांग कर रहे थे, संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत अधिक स्वायत्तता दी जाएगी, जिससे वे अपनी पहचान, भाषा और परंपराओं को बचा सकें। समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने कहा,
ये दिन असम और कार्बी क्षेत्र के इतिहास में सुवर्णमयी अक्षरों के साथ निश्चित रूप से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 5 से अधिक संगठनों के लगभग 1000 कैडर ने हथियार डालकर मेन स्ट्रीम में आने की शुरुआत करी है और उनके पुनर्वासन के लिए असम सरकार और भारत सरकार पूर्णतया कटिबद्ध है और ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीति है। जो हथियार छोड़कर आता है उसके साथ आने वाले से भी ज्यादा विनम्रता से बातचीत कर जो वो मांगते हैं उससे भी ज्यादा देकर उनको विकास की मुख्य धारा में समाहित कर।
दिल्ली के इतिहास की एक और भूली बिसरी दास्तान को अब देशवासियों को समझने का मौका मिलेगा। दिल्ली सचिवालय से लाल किले तक जाने वाली सुरंग, जिसे ब्रिटिश हुकूमत ने संभवतः 1857 के गदर के बाद सुरक्षा कारणों से बनवाया था, अगले साल 15 अगस्त को दर्शकों के लिए खोल दी जाएगी। इस विषय में बात करते हुए दिल्ली विधानसभा के स्पीकर श्री राम निवास गोयल ने बताया,
यहाँ एक सुरंग है जो लाल किले तक जाती है और जहाँ क्रांतिकारियों को यहाँ लाया जाता था, उस सुरंग के बारे में मैंने कुछ इतिहास ढूंढने की कोशिश की, वो नहीं मिला। लेकिन सुरंग का जो जायजा लिया गया, उस जायजे के आधार पर एक सुरंग का माउथ मिला है। लेकिन उस सुरंग को आगे हम नहीं खोद रहे हैं, क्योंकि सुरंग के सारे रास्ते, मेट्रो बना, उनका पाइल फाउंडेशन हुआ बहुत डीपली, सिविल लाइन डली, वो सब डैमेज हो चुके हैं। एक स्वरूप दे करके आम जनता के लिए खोला जाए। हाँ, मेरा अनुमान है 26 जनवरी, तो मैक्सिमम 15 अगस्त 2022।
आइए अब सुनते हैं खेल जगत से जुड़े कुछ समाचार। टोक्यो ओलंपिक्स में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के बाद भारत ने टोक्यो पैरालंपिक्स में और भी बेहतर प्रदर्शन कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। पदकों की झड़ी लगाते हुए 54 सदस्यीय खिलाड़ियों के दल ने 5 स्वर्ण पदकों सहित कुल 19 पदक हासिल किए। इससे पहले भारत पैरालंपिक्स में अब तक सिर्फ 12 मेडल ही जीत पाया था। निशानेबाजी में सुश्री अवनी लखेरा और श्री मनीष नरवाल ने एक एक स्वर्ण पदक जीता, जबकि बैडमिंटन में श्री प्रमोद भगत और श्री कृष्णा नागर ने एक एक स्वर्ण पदक जीते। भारत को 5वां स्वर्ण पदक जेवलिन में मिला, जिसे श्री सुमित अंतिल ने नया रिकॉर्ड बनाते हुए जीता। इन पदकों में एक खास पदक नोएडा में जिला अधिकारी के तौर पर कार्यरत श्री सुहास यथिराज का रहा, जिन्होंने बैडमिंटन में कांटे के संघर्ष में रजत पदक हासिल किया। वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के पैरालंपिक्स में मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं। उनकी इस सफलता पर उनकी पत्नी श्रीमती रितु सुहास ने कुछ इस तरह खुशी जाहिर करी।
ये हम मेरे लिए नहीं, ये पूरे देशवासियों के लिए एक हर्ष का विषय है और पैरा गेम्स में एक नया कीर्तिमान है, सिविल सर्विसेज के लिए हमारे लिए एक कीर्तिमान है और इट इज़ अ पिनाकल क्लाइमैक्स ऑफ द हार्डवर्क ऑफ पास्ट 6 ईयर्स।
भारत और इंग्लैंड के बीच ओवल में खेला जा रहा 4था टेस्ट एक निर्णायक दौर में पहुँच गया है, जहाँ कोई भी टीम जीत या हार सकती है। 4थे दिन रोहित शर्मा के 127 रनों और चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत के अर्धशतकों ने बेशक भारत को खतरे से बाहर निकाला, लेकिन उसके बाद भारत के टेलेंडर्स शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह और उमेश यादव ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारत का स्कोर 466 रन पहुंचा दिया और इंग्लैंड के सामने जीत के लिए एक मुश्किल 368 रनों का लक्ष्य रखा। स्टंप्स के समय इंग्लैंड की टीम ने बिना विकेट खोए 77 रन बना लिए थे। अब इंग्लैंड को जीत के लिए 291 रन चाहिए। आज के समाचार यहीं समाप्त करने की अनुमति दीजिए। SBS हिंदी सेवा से मनन कुमार का आप सबको नमस्कार।